का था, रूह वही, रूप नया।
आप सुनने जा रहे हैं कहानी फरीदी और लियोनार्ड का भाग एक। इसे लिखा है मशहूर जासूसी लेखक इब्ने सफी ने। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की इमारत सुबह की धुंध में डूबी हुई कुछ अजीब सी लग रही थी। हिंदुस्तान के उत्तरी इलाके में यूं ही कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन बर्फबारी हो जाने की वजह से भी आज कई दिनों से ठंड बहुत ज्यादा हो गई है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की इमारत बड़े बड़े चौकोर पत्थरों को जोड़कर बनाई गई है। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे वो गुरूर में कोहरे की गहरी चादर पर हंसी हंसती हुई कह रही हो कि हमें क्या परवाह, चाहे जितनी ठंड पड़े, हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होने वाला। हमारे अंदर तो ऐसे ऐसे राज दफन हैं जिनकी हवा भी दुनिया को नहीं लगती। दुनिया के सैकड़ों राज हमारे सीने में दफन होने के लिए आते हैं और हमारे ही होकर रह जाते हैं। इसी इमारत के कंपाउंड में कई शानदार बंगले बने हुए हैं। इन्हीं बंगलों में से एक के बरामदे में एक खूबसूरत अंग्रेज औरत शायद किसी का इंतजार कर रही थी। उसने सोने वाले कपड़ों के ऊपर एक ऊनी कपड़ा पहन रखा था। उसकी निगाहें बार बार बरामदे में लगे हुए गुलाब के पेड़ की तरफ उठ जाती थी। थोड़ी देर के बाद एक कार कंपाउंड में दाखिल हुई। अंग्रेज औरत बेताबी के साथ बरामदे से उतरकर आगे बढ़ी। एक अधेड़ उम्र का तंदुरुस्त अंग्रेज कार से उतरा। उसने आगे बढ़कर औरत की कमर में हाथ डाल दिया। ओ जैक्सन डार्लिंग, वो औरत अंग्रेजी में बोली, खुदा का शुक्र है कि मैं तुम्हें तंदुरुस्त देख रही हूं। अंग्रेज ने झुककर औरत का माथा चूम लिया, फिर दोनों बंगले में दाखिल हो गए। ये P.L. जैक्सन खुफिया पुलिस का सुपरिटेंडेंट था। लगभग 2 महीने से बहुत बीमार था। उसकी जबान के नीचे एक फोड़ा निकल आया था, जिसकी वजह से वो लगभग गूंगा होकर रह गया था। खाने पीने में भी परेशानी होती थी। जब तक उसके दिल में विल पावर रही, वो बीमारी की तरफ से लापरवाही करता रहा। लेकिन जब तकलीफ ज्यादा बढ़ गई तो उसे अस्पताल में दाखिल होना पड़ा, जहां उसके फोड़े का ऑपरेशन कर दिया गया। आज 2 महीने के बाद वो पूरी तरह सेहतमंद होकर घर वापस आ गया। जो औरत उसका इंतजार कर रही थी वो उसकी बीवी थी। उसी दिन दोपहर की बात है, दफ्तर में हमीद फरीदी के कमरे में हंसता हुआ दाखिल हुआ। फरीदी अखबार पढ़ने में मशगूल था। उसने चौंक कर हमीद की तरफ सवालिया अंदाज से देखा। शायद ऑपरेशन के सिलसिले में मिस्टर जैक्सन के दिमाग की भी कई रगें कट गई हैं, हमीद ने कहा। क्या मतलब? चपरासियों से लेकर डिप्टी सुपरिटेंडेंट तक को एक एक करके अपने कमरे में बुला चुके हैं। स्टाफ की हाजिरी का रजिस्टर सामने खोल रखा है। क्यों? पता नहीं। आपको सलाम कहा है, हमीद ने मुस्कुरा कर कहा। फरीदी ने उठकर सिगार का जला हुआ टुकड़ा एश्ट्रे में डालते हुए कहा। अखबार मोड़कर उसने जेब में रखा और पंजों के बल चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। ये उसकी अजीबोगरीब आदत थी कि वो दफ्तर में आम तौर पर पंजों के बल चला करता था। शायद उसका मकसद ये था कि जूतों की आवाज से किसी काम में खलल ना पड़े। वो पर्दा उठाकर मिस्टर जैक्सन के कमरे में दाखिल हो गया। हेलो मिस्टर फरीदी, आप अच्छे तो हैं? सुपरिटेंडेंट ने पूछा। जी मेहरबानी, मैं आपको आपकी सेहतयाबी की मुबारकबाद देता हूँ, फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा। शुक्रिया शुक्रिया, बैठिए, जैक्सन ने कहा। फरीदी बैठ गया। मैं क्या बताऊं कि मुझे अपने स्टाफ से कितनी मोहब्बत है, जैक्सन मुस्कुरा कर बोला। और दफ्तर आकर सबसे पहला काम यही होता है कि एक एक करके सबको बुलाकर मुलाकात की जाए। हम सब आपकी मोहब्बत की कद्र करते हैं जनाब, फरीदी ने कहा। इस दौरान मैंने कितनी तकलीफ उठाई, जैक्सन बोला। अरे तकलीफ की चीज़ ही थी, आपकी आवाज़ बदली बदली सी महसूस कर रहा हूँ, फरीदी ने कहा। हाँ भाई, ये ऑपरेशन ऐसी चीज़ ही है, गले और जबान का ऑपरेशन हुआ था, ऐसी सूरत में आवाज कायम रह गई, इसी को गनीमत समझता हूं। वाकई खुदा ने बड़ा रहम किया। फरीद ने यह जुमला यूं ही रस्मी तौर पर कहा। उसे रस्मी बातचीत से बहुत नफरत थी। वो एक मुंह फट और बेधड़क हकीकत का इजहार करने वाला आदमी था। इस वक्त मैंने खास तौर पर आपको एक जरूरी मामले में राय करने के लिए बुलाया है। हाँ हाँ, कहिए। कल रात अस्पताल में मुझे इंस्पेक्टर जनरल की तरफ से खबर मिली थी जो हम सब के लिए बहुत दिलचस्प है। तुमने यूरोप के मशहूर ब्लैकमेलर लियोनार्ड का नाम तो सुना ही होगा। वो अपने कुछ साथियों के साथ हिंदुस्तान आया है और उसने अपना हेडक्वार्टर हमारे ही शहर में बनाया है। खबर तो बहुत दिलचस्प है, फरीदी ने दिलचस्पी जाहिर करते हुए कहा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम इसमें जरूर दिलचस्पी लोगे, जैक्सन ने हंसकर कहा। तुम तो मौकों की तलाश में ही रहते हो। अब मुझे 100% यकीन है कि तुम सचमुच एक माहिर अफसर हो। हाँ तो वो लियोनार्ड, फरीदी ने जैक्सन की बात काटते हुए कहा। हाँ तो लियोनार्ड बहुत ही खतरनाक आदमी है जिसने सारे यूरोप को हिला रखा है। और हद की बात तो ये है कि स्कॉटलैंड के मशहूर जासूस भी उसे पकड़ नहीं सके हैं। जी हाँ, मैं जानता हूं कि वो एक इंटरनेशनल ब्लैकमेलर है। यूरोप के बड़े बड़े घराने उसके नाम से कांपते हैं। उसने एक बार स्कॉटलैंड यार्ड के मशहूर जासूस पीटरसन की अच्छी खासी दुर्गत बनाई थी। तुम ठीक समझे, मैं उसी लियोनार्ड की बात कर रहा हूं, जैक्सन ने कहा। मगर एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर वो हिंदुस्तान क्यों आया है। यहां के राजाओं और नवाबों को ब्लैकमेल करने के लिए, फरीदी ने कहा। तुम्हें कैसे मालूम? क्या तुम उसकी मौजूदगी के बारे में पहले से ही जानते हो? जी हाँ, वो किस तरह, जैक्सन ने पूछा। फरीदी ने जेब से अखबार निकालकर सुपरिटेंडेंट के सामने मेज पर फैला दिया और एक विज्ञापन की तरफ इशारा किया। सुपरिटेंडेंट पढ़ने लगा। यहां का वो नवाब अलर्ट हो जो आज से 3 साल पहले सिर्फ अय्याशी की वजह से एक मामूली पर्यटक के भेस में इंग्लैंड गया था। वहां उसने एक किसान की खूबसूरत लड़की पर डोरे डाले थे, लेकिन कामयाब ना होने पर उसने शादी कर ली थी। फिर कुछ दिन उसके साथ रहकर वो चुपके से हिंदुस्तान आया था। उस नवाब को मालूम होना चाहिए कि अब उसकी रियासत का एक जायज वारिस पैदा हो गया है। मेरे पास शादी के सर्टिफिकेट के साथ सारे सबूत मौजूद हैं, जिनकी कीमत 75 करोड़ रुपए है। अगर नवाब उन सारी चीजों को हासिल करना चाहे तो इस अखबार के जरिए अपनी रजामंदी जाहिर कर सकता है, वरना ये सारे सबूत उसके नए वारिस के हक में इस्तेमाल किए जाएंगे। देखा आपने, फरीदी ने कहा। जैक्सन ने कुछ सोचते हुए सिर हिलाया। मगर ये कैसे कहा जा सकता है कि ये लियोनार्ड की हरकत है? मैं करीब 1 माह से इस तरह के विज्ञापनों की कटिंग इकट्ठा कर रहा हूं और ये सब यूरोप ही के हालात से मिलते जुलते हैं, और इनमें से मुझे कोई भी विज्ञापन ऐसा नजर नहीं आया जो किसी मोटे आसामी से न जुड़ा हो, फरीदी ने कहा। मिस्टर फरीदी, जैक्सन बोला, मैं इसीलिए तुम्हारी कद्र करता हूं कि तुम्हारी नजरें बहुत तेज हैं। मैंने अभी लगभग सारे अफसरों से इस मामले में बातचीत की है, लेकिन किसी ने भी इन इश्तिहारों का हवाला नहीं दिया। अरे इसमें कौन सी खास बात है, फरीदी बोला। ये तो ऐसी चीज है जिसने मामूली से मामूली दिमाग वाले आदमी को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया होगा। तुमने अभी इस किस्म के और विज्ञापन का जिक्र किया था, क्या उनके कटिंग्स हैं तुम्हारे पास? जैक्सन ने मुस्कुराकर कहा। जी हाँ, 2-3 यहीं दफ्तर में मौजूद हैं। ठहरिए, मैं अभी आपको दिखाता हूं, फरीदी ने उठते हुए कहा। फरीदी अंग्रेजी अखबार की कुछ कतरने उठा लाया और उन्हें बारी बारी से पढ़ने लगा। ये देखिए, वो महारानी साहिबा पे ध्यान दें जो अय्याशी के लिए हर साल पेरिस जाती हैं। उनके वो खत मेरे पास मौजूद हैं जो उन्होंने अपने आशिक को लिखे थे। उन खतों की कीमत 16 करोड़ रुपए है। अदायगी ना होने की सूरत में ये खत छपवा दिए जाएंगे। सौदा इसी अखबार के जरिए तय किया जा सकता है। और दूसरा इश्तेहार ये है, वो हसीनो जमील नवाबजादी ध्यान दें जो पिछले साल अपने एक आशिक को लेकर स्विट्जरलैंड गई थी। वो देखने में उनका प्राइवेट सेक्रेटरी था। मेरे पास उन दोनों की कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें छपवा देना बहुत ही दिलचस्प साबित हो सकता है। उन तस्वीरों की कीमत 20 करोड़ रुपए है। इस सिलसिले में उसी कीमत के जेवरात कबूल किए जा सकते हैं। अदायगी ना होने की सूरत में ये तस्वीरें छपवा कर बंटवा दी जाएंगी। इस अखबार द्वारा रजामंदी जाहिर की जा सकती है। इसी तरह के और भी इश्तिहार हैं। लीजिए, आप खुद ही पढ़ लीजिए। फरीदी ने सारी कतरने जैक्सन की तरफ बढ़ा दी। हैरत है कि पुलिस ने अभी तक इस तरफ ध्यान नहीं दिया, जैक्सन ने कहा। ये तो खुला जुर्म है। लगता है अखबार ब्लैकमेलिंग का हौसला बढ़ा रहा है। उसे तो फौरन जब्त करके मुकदमा चलाना चाहिए। फरीदी हंसने लगा। लियोनॉर्ड या उसके साथ रहने वाले मामूली आदमी नहीं है, वे इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आ सकते, फरीदी ने कहा। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। जरा आज के अखबार के एडिटोरियल का ये हिस्सा देखिए, फरीदी ने अखबार जैक्सन की तरफ बढ़ाते हुए कहा। जैक्सन पढ़ने लगा। हमने अपने पाठकों की दिलचस्पी के लिए ऐसे विज्ञापनों के नमूने छापने का सिलसिला शुरू किया है जो यूरोप में ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आज के अखबार में भी आपको ऐसा विज्ञापन मिलेगा। हम आगे भी आपकी दिलचस्पी के लिए उनका सिलसिला जारी रखेंगे। जैक्सन पढ़ चुकने के बाद फरीदी की तरफ हैरत से देखने लगा। मगर ये तो बताओ कि तुमने आज तक किसी का जवाब भी अखबार में देखा है या नहीं, जैक्सन ने पूछा। ऐसी सूरत में जबकि खुद अखबार वाले मिले हों, जवाब छापने की जरूरत ही क्या रह जाती है, फरीदी ने कहा। लेकिन ये कैसे कहा जा सकता है कि अखबार वाले मिले हुए हैं? उन खतों के बारे में एडिटोरियल नोट पढ़कर कहा जा सकता है। बात दरअसल ऐसी है कि मिस्टर फरीदी, कि तुम बातों को बहुत घुमा फिरा के सोचने के आदि हो, जैक्सन ने कहा। हो सकता है कि इस किस्म के अखबार दिलचस्पी के लिए छापे जाते हों। लेकिन मुझे तो इसमें कोई दिलचस्पी नजर नहीं आती, फरीदी ने कहा। और अगर दिलचस्पी ही के लिए इसका सिलसिला शुरू किया गया है तो एक दो इश्तिहार काफी थे, या फिर हर इश्तिहार में कोई नई बात होनी चाहिए थी। अब तक लगभग 15 इश्तिहार छप चुके हैं, लेकिन सब एक जैसे। हर एक में एक नए ढंग से रुपयों की मांग की गई है। खैर भाई, यही होगा, जैक्सन ने उकता कर कहा। मुझे दरअसल तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि लियोनॉर्ड का पता लगाने के लिए 6 जासूसों की एक कमिटी बनाई गई है जिसमें तुम्हारा भी नाम है। तो क्या सबको काम के एक ही तरीके पर अमल करना पड़ेगा, फरीदी ने कहा। बिल्कुल, जैक्सन ने मेज पर झुकते हुए कहा, ये जरूरी है। लेकिन मैं इसका आदि नहीं, मजबूरी है, ये तो करना ही पड़ेगा। तुम्हें रोजाना रिपोर्ट देनी पड़ेगी। आप जानते हैं कि मैं इस पर अमल नहीं कर सकता, फरीदी ने कहा। इस बार तो तुम्हें अमल करना ही पड़ेगा क्योंकि सारे ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं, जैक्सन बोला। और अगर मैं इनकार कर दूं तो, फरीदी ने कहा। क्यों बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, जैक्सन ने जोर देते हुए कहा। यहां रहकर तुम्हें ऑर्डर का पाबंद होना पड़ेगा। और अगर मैं इस्तीफा दे दूं तो? मैं तुम्हें इसकी राय बिल्कुल नहीं दूंगा, जैक्सन बोला। लेकिन मैं अपने उसूल के खिलाफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। आखिर इसमें तुम्हारा नुकसान ही क्या है, जैक्सन झुंझला कर बोला। तुम्हारे जैसा आदमी तो मेरी नजरों से गुजरा ही नहीं। मुझे डर है कि तुम कहीं अपनी जान जोखिम में न डाल लो। हमें तुम्हारी स्कीमों की खबर ना होगी तो हम तुम्हारी हिफाजत कैसे करेंगे? आपका फरमान सही है, फरीदी ने धीरे से कहा। और आप ये भी जानते हैं कि मैं इस डिपार्टमेंट में रोटियों के लिए नहीं आया। मेरी तबीयत ने इस मनपसंद पेशे में आने पर मुझे मजबूर किया है। मेरा उस काम में दिल ही नहीं लगता जिसमें कदम कदम पर मौत का खतरा ना मंडराता हो। निजी तौर पर यह चीज तुम्हारे लिए ठीक हो सकती है, लेकिन डिपार्टमेंट के हक में ठीक नहीं है। लेकिन इससे पहले तो मुझे इस बात पर कभी मजबूर नहीं किया गया, फरीदी ने कहा। भाई, पहले की बात और थी। पहले तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ मुझसे था, लेकिन इस बार सीधे इंस्पेक्टर जनरल का मामला है। खैर, देखा जाएगा, फरीदी ने कहा। मैं कोशिश करूंगा कि उनकी हिदायतों पर अमल करूं। आज शाम तक बाकी 5 जासूस भी यहां पहुंच जाएंगे। मैं कल उनसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवा दूंगा। ये सब अलग अलग स्टेट के बेहतरीन दिमाग हैं। थोड़ी देर बाद फरीदी वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। मशहूर अखबार न्यू स्टार के दफ्तर की इमारत रोशनी से जगमगा रही थी। रात के लगभग 10 बजे होंगे। ज़्यादा सर्दी होने की वजह से सड़कों पर कम ही लोग नज़र आ रहे थे। रात के सन्नाटे में अखबार छापने वाली मशीनों की घड़घड़ाहट दूर तक सुनाई दे रही थी। उसके साथ ही कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें भी फिज़ा में गूंज उठती थीं। न्यू स्टार के दफ्तर और छापे खाने में लोग तेज़ी से काम को अंजाम दे रहे थे। तभी एडिटर के कमरे में शोर होने लगा। करीब के लोग अपना काम काज छोड़कर कमरे के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। एडिटर अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े लोगों से कह रहा था, जाओ, तुम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हो गए, जाओ अपना काम करो। लोग धीरे धीरे अपने कामों में लग गए। एडिटर कमरे में लौट आया। यहाँ एक आदमी आराम कुर्सी पर बेहोश पड़ा था। सब एडिटर उसके कपड़ों के बटन खोल रहा था। दौड़ो, जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ, एडिटर ने सब एडिटर से कहा। सब एडिटर बेहोश आदमी को उसी हालत में छोड़कर बाहर चला गया। एडिटर ने बैठकर एक सिगरेट सुलगाया और मुस्कुराते हुए बेहोश आदमी की तरफ देखने लगा। बेहोश आदमी ने आराम कुर्सी पर बदस्तूर लेटे ही लेटे अधखुली आंखों से कमरे का जायजा लिया और एक हाथ अल्स्टर की जेब के अंदर डालकर नोटों का एक बंडल निकाला और फर्श पर गिरा दिया। एडिटर ने झुककर बंडल उठाया और अपनी जेब में रख लिया। उसके बाद बेहोश आदमी की कुर्सी से एक तह किया हुआ कागज गिरा। एडिटर ने उसे भी उठाकर मेज के दराज में रख लिया। फिर वो उठकर कमरे के दरवाजे पर आया और चेक उठाकर इधर उधर देखने लगा। आसपास कोई मौजूद नहीं था। वो बाहर निकलकर बरामदे में खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद सब एडिटर डॉक्टर को लेकर आ गया। उन दोनों के पीछे एक और आदमी था। उसने उनके करीब पहुंचकर अपना हैट उतारा और अपना विजिटिंग कार्ड घबराए हुए एडिटर की तरफ बढ़ा दिया। एडिटर डॉक्टर से कह रहा था, डॉक्टर साहब जरा देख लीजिए, मैं तो सख्त परेशान हूँ, मालूम नहीं बेचारा किस काम से आया था, कमरे में दाखिल होते ही बेहोश होकर गिर पड़ा। अच्छा अच्छा, देखता हूँ। ये कहकर डॉक्टर सब एडिटर के साथ कमरे में चला आया। डॉक्टर वहीं खड़ा आने वाले के विजिटिंग कार्ड को गौर से देख रहा था। फरीदी साहब, एडिटर ने आने वाले को घूरते हुए कहा, फरमाइए, आपका कैसे आना हुआ? कोई खास बात नहीं, फरीदी ने कहा, पहले आप अपने मरीज को देख लीजिए, फिर बाद में बातें होती रहेंगी। एडिटर कमरे की तरफ बढ़ा, उसके पीछे फरीदी भी। कहिए डॉक्टर साहब, क्या बात है? एडिटर ने कहा। कोई खास बात नहीं, मुझे ये बेहोशी बहुत ज्यादा थकान का नतीजा मालूम होती है, डॉक्टर ने कहा, ये जल्द ही होश में आ जाएंगे। फरीदी ने बेहोश आदमी की तरफ देखा और चौंक पड़ा। तशरीफ रखिए, एडिटर ने फरीदी से कहा। उसकी आवाज में कंपकपी थी, जिसे डर का नतीजा कहा जा सकता है। फरीदी खामोशी से एक कुर्सी पर बैठ गया। कमजोर दिल वाले लोगों पर अक्सर सर्दियों में इस तरह के दौरे पड़ जाते हैं।
आपका ख्याल दुरुस्त है, डॉक्टर ने कहा।
ये हैं कौन साहब? फरीदी ने कहा।
मालूम नहीं, एडिटर ने कहा। इन्होंने चपरासी से अपना विजिटिंग कार्ड भिजवाया था, उसके बाद ये खुद अंदर आए और बेहोश होकर गिर पड़े। मैं और मेरा असिस्टेंट दोनों यहाँ मौजूद थे। हमने इन्हें उठाकर कुर्सी पर डाल दिया और असिस्टेंट डॉक्टर को लेने चला गया।
फरीदी ने मेज पर से अजनबी का विजिटिंग कार्ड उठाकर देखा, जिस पर लिखा हुआ था, प्रिंस ऑफ इराक अदनान। फरीदी ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तो सूरत देखकर ही समझ गया था कि कोई बड़ा आदमी है।
जी हाँ, मेरी परेशानी की वजह दरअसल यही है,
एडिटर सिगरेट सुलगाता हुआ बोला।
लीजिए, शौक फरमाइए।
उसने सिगरेट केस फरीदी की तरफ बढ़ाया।
जी नहीं, शुक्रिया, मैं सिर्फ सिगार पीता हूँ, फरीदी ने कहा। अजीब मुसीबत है,
एडिटर ने बेहोश आदमी की तरफ देखते हुए कहा।
अगर इस तरह का खतरनाक मर्ज है तो ऐसे लोग वक्त बेवक्त घर से निकलते ही क्यों हैं?
थोड़ी देर बाद अजनबी को होश आ गया। वो सीधा होकर बैठ गया। उसने चुंधियाई हुई आंखों से चारों तरफ देखा और मुस्कुराहट के साथ अंग्रेजी में बोला,
मुझे अफसोस है कि बेवजह आप लोगों को परेशानी उठानी पड़ी।
कोई बात नहीं, एडिटर ने मुस्कुरा कर कहा,
फरमाइए कैसे तशरीफ लाए थे।
मुझे 5 मिनट की मोहलत दीजिए, अजनबी बोला।
मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं क्यों आया था। इस तरह के दौरों के बाद अक्सर मैं थोड़ी देर के लिए अपनी याददाश्त खो बैठता हूँ।
बड़ी अजीब बात है, फरीदी मुस्कुराते हुए बोला।
जी हाँ, यूरोप में लगभग हर मुल्क में मैंने अपने इस मर्ज का इलाज करवाना चाहा, लेकिन बेकार,
अजनबी ने कहा और कुछ सोचने लगा। मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान में आपके मर्ज का ठीक से इलाज हो जाएगा, फरीदी ने कहा।
अजनबी उसके जुमले पर चौंक पड़ा और बोला, जी हाँ, मैं दरअसल आपके अखबार में एक इश्तिहार देने के लिए आया था।
हाँ हाँ, शौक से, एडिटर ने कहा।
मुझे एक ड्राइवर की जरूरत है।
अगर ये बात है तो अंग्रेजी अखबार आपके लिए बेकार साबित होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में शायद ही कोई अंग्रेजी पढ़ा हुआ पेशेवर ड्राइवर मिल सके, फरीदी ने कहा।
लेकिन मुझे तो अंग्रेजी ही जानने वाला चाहिए, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी जबान नहीं समझ पाता,
अजनबी ने कहा। खैर, कोशिश कीजिए, शायद कोई मिल जाए, फरीदी बोला।
आप अपना पता मुझे दे दीजिए, मैं इश्तिहार छपवा दूंगा,
एडिटर ने अजनबी से कहा। थोड़ी देर तक इधर उधर की बात करने के बाद जब अजनबी खड़ा हो गया, उसने वहां से बैठे हुए सब लोगों से हाथ मिलाया और कमरे से बाहर निकल गया।
हाँ तो फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ,
एडिटर ने फरीदी की तरफ देख कर कहा। जनाब, पहले ये बताइए कि आपके कमरे में इतना सफोकेशन क्यों है, फरीदी ने कहा।
क्यों, क्या बात है,
एडिटर ने कहा। मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे मैं अभी थोड़ी देर में बेहोश हो जाऊंगा, फरीदी ने घुटी हुई सी आवाज में कहा।
अरे,
एडिटर हैरत से आंखें फाड़ता हुआ बोला।
जी हाँ, जरा जल्दी से, डॉक्टर शायद अभी थोड़ी दूर ही गया होगा,
फरीदी ये कहते कहते कुर्सी पर एक तरफ लटक गया, उसका बायां हाथ जमीन पर झूल रहा था। एडिटर घबरा कर खड़ा हो गया, वो उसे आवाजें दे रहा था लेकिन बेकार, फरीदी बेहोश हो चुका था। बजाय इसके कि वो घंटी बजाकर किसी को बुलाता, एडिटर खुद बाहर की तरफ भागा, शायद वो डॉक्टर को बुलाने जा रहा था। उसने उसे इमारत के गेट पर ही जाते रोक लिया।
डॉक्टर, डॉक्टर, फौरन वापस चलो, वो दूसरे साहब बेहोश हो गए हैं।
दूसरे दिन फरीदी और हमीद में बात हो रही थी। उस दिन के न्यूज स्टार का एडिशन मेज पर खुला हुआ पड़ा था। देखो, आज उन दिलचस्प इश्तिहारों का सिलसिला नहीं छपा, फरीदी ने कहा।
एडिटर ने माफी भी मांगी है, हमीद बोला।
ये देखिए, लिखता है, हमें अफसोस है कि अचानक कागज खो जाने की वजह से आज के अंक में ब्लैकमेलिंग का दिलचस्प इश्तिहार प्रकाशित ना हो सकेगा। ये बात तो उसने बिल्कुल सच लिखी है, कागज सचमुच खो गए हैं। और शायद तुम ये भी जानते हो कि आजकल शहर में खोई हुई चीजें मेरी जेब में बरामद होती हैं, फरीदी बोला।
क्या मतलब,
हमीद ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। यानी ये कि वो कागज इस वक्त मेरी जेब में मौजूद है, फरीदी ने जेब से तह किया हुआ कागज निकालते हुए कहा।
पढ़ो, हमीद पढ़ने लगा।
लंदन की हसीन रात कौन भूल सकता है, जब प्रिंस ने अपनी कुंवारी चचेरी बहन को एक रात के लिए अपनी बीवी बनाया था। लंदन के जेम्फर्स होटल का कमरा 115 सुहाग रात की रंगीनियों से भरा हुआ था। प्रिंस की चचेरी बहन दूसरे ही दिन हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गई। वापसी पर 3 दिन के ही अंदर उसने एक जागीरदार से शादी कर ली। मेरे पास इसके काफी सबूत हैं कि वो जिस बच्चे की माँ बनने वाली है वो जागीरदार का नहीं है। मैं उस प्रिंस और उसकी चचेरी बहन से 15 करोड़ रुपए का सौदा करता हूँ, अदायगी ना होने की सूरत में ये राज उस जागीरदार को सबूत के साथ बताया जाएगा, लेन देन इसी अखबार के जरिए होगा।
लेकिन लेकिन ये आपको कैसे मिला, हमीद ने पूछा।
फरीदी ने उस रात के सारे हालात बताते हुए कहा। मेरे बेहोश होते ही एडिटर घबरा कर डॉक्टर को बुलाने के लिए कमरे से बाहर निकल गया और मैंने जल्दी जल्दी उस कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने मेज की दराजों को खोला। इत्तेफाक से ये कागज ऊपर ही रखा हुआ मिल गया। बस इतना ही काफी था। मैंने जल्दी से इसे जेब में डाला और फिर बेहोश बनकर लेट गया। इस कागज पर दो आदमियों की उंगलियों के निशान मिले और दूसरे निशान के बारे में मैं भी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुझे जिस पर शक है उसके पीछे मैं तुम्हें लगाना चाहता हूं। तुम आसानी से उसकी उंगलियों के निशान ले सकोगे। वो कौन है? हमीद ने बेताबी से पूछा। वही शख्स जो रात एडिटर के कमरे में बेहोश हो गया था, फरीदी ने कहा। इसके लिए तुम्हें उसका ड्राइवर बनना पड़ेगा। मैं समझ गया। हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ये तो बताइए कि आपने होश में आने के बाद एडिटर को क्या बताया था कि आप उससे क्यों मिलने गए थे? हमीद ने पूछा। अरे ये भी कोई खास बात है? फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा। मैंने कल के एक लेख के बारे में उससे बातचीत शुरू कर दी जो कुछ सरकार के खिलाफ था। मैंने उससे कहा कि न्यू स्टार मुझे बहुत पसंद है, मैं नहीं चाहता कि सरकार उस पर किसी किस्म की पाबंदी लगा दे, लिहाजा इस किस्म के लेख न छापे जाएं। बहुत खूब, बहुत खूब। और उस शख्स की अचानक बेहोशी के बारे में आपकी क्या राय है? हमीद ने फिर पूछा। मेरा ख्याल है कि वो शख्स ये विज्ञापन एडिटर को देने के लिए आया होगा और मौका ना मिलने पर उसने ये चाल चली। उसे बेहोश होते देखकर एडिटर ने अपने असिस्टेंट को डॉक्टर के लिए दौड़ाया। इस दौरान उसने वो विज्ञापन एडिटर को दिया होगा। जब वो होश में आया, मैं वहां मौजूद था, मेरे अलावा डॉक्टर भी था। हम लोगों की मौजूदगी में उसने यही जाहिर करना मुनासिब समझा कि वो एक मोटर ड्राइवर के लिए अखबार में इश्तिहार देना चाहता है। हमीद ने कुछ समझते हुए सिर हिलाया। देखो, इस अखबार में प्रिंस अदनान की तरफ से एक ड्राइवर के लिए इश्तिहार छपा हुआ है, लेकिन अब उसे धोखा देना मुश्किल हो जाएगा, हमीद ने कहा। तुम ठीक समझे। एडिटर ने उसे रात ही में खबरदार कर दिया होगा कि इश्तिहार का कागज गुम हो गया है और वो भी समझ गया होगा कि ये मेरा ही काम है। इसमें शक नहीं है कि अब प्रिंस अदनान काफी एहतियात से काम लेगा। आप ये सब बातें कैसे कह रहे हैं, जैसे आपको पूरा यकीन हो कि प्रिंस अदनान ही असली मुजरिम है? हमीद ने कहा। असली मुजरिम वो नहीं है बल्कि लियोनार्ड है, वो तो उसका एक एजेंट मालूम होता है, फरीद ने कहा। चलिए एक ना सही, दो सही, मैं तो प्रिंस अदनान ही को लियोनार्ड समझ रहा था, हमीद बोला। तुम गलत समझ रहे थे, लियोनार्ड अंग्रेज है और प्रिंस अदनान हिंदुस्तानी, फरीदी मुस्कुरा कर बोला। हिंदुस्तानी या इराकी? हमीद ने पूछा। 100% हिंदुस्तानी। वो कैसे? देखो, पहले तुम उसे एक बार देख कर आओ, फिर बताऊंगा, फरीदी ने कहा। अरे तो मैं किस तरह जाऊं? हमीद ने कहा। पैदल? ओह हाँ हाँ, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं उससे किस हैसियत से मिलूं? हमीद ने झुंझला कर पूछा। अरे नौकरी के लिए एक ड्राइवर की हैसियत से। मगर अब वो काफी होशियार हो गया होगा, तब तो मुझे और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी, फरीदी ने कहा। हमेशा याद रखो कि मुजरिम उस वक्त बहुत आसानी से पकड़ में आ जाता है जब वो हद से ज्यादा होशियार हो जाए। मैं तो ये चाहता ही हूं कि तुम्हारे जाने पर उसे किसी तरह का शक हो जाए कि यहां के जासूस उसके पीछे लग गए हैं। हमीद ने हां के अंदाज में सिर हिलाया। लेकिन एक बात का ख्याल खास तौर पर रखना, उस पर यह ना जाहिर हो पाए कि तुम अंग्रेजी बहुत अच्छी जानते हो। बात टूटी फूटी अंग्रेजी में ही करना और इस बात की कोशिश करना कि उसे शक ना हो पाए। अगर शक हो भी गया हो तो उसकी फिक्र नहीं, क्योंकि इस सूरत में भी मैं कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लूंगा, फरीदी बोला। मैं अच्छी तरह समझ गया। अच्छा तो मैं किस तरह जाऊं? क्या भेज बदलने की भी जरूरत होगी? फरीदी ने पूछा। अरे बिल्कुल, बगैर भेज बदले तुम उसके सामने जाना भी मत, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। आज 3 बजे तुम उसके यहां पहुंच जाना। और हाँ, मैं अभी तुम्हें एक तजर्बेकार मिलिट्री ड्राइवर का सर्टिफिकेट भी दे दूंगा। आप सुन रहे थे फरीदी और लियोनार्ड कहानी का भाग एक। हमीद के ड्राइवर बन के प्रिंस अदनान के यहां जाने के बाद ऐसे कौन कौन से राज थे जो सामने आए, जानने के लिए सुनिए अगला भाग।